लास्ट टाइम हम उपनयन संस्कार की चर्चा कर रहे थे, उसका क्या इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली और सोसाइटी के ऊपर। और उपनयन संस्कार में जो धागे पहने जाते हैं, तीन धागे, उन तीन धागे क्यों पहने जाते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके डिटेल में हमने जाना। और ये भी हमने जाना, जब जनेऊ हम पहनते हैं, उपवित पहनते हैं, बाएं कंधे से लेकर के दाएं तरफ से कमर तक, उसका भी क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट है वो उससे क्या सीख ले, क्या उसके लिए रिमाइंडर के रूप में वो कैसे उसको यूज करे, उस पर हमने जाना। आज उसकी कंटिन्यूटी में आगे जानेंगे। और उसके अलावा उपनयन संस्कार के बाद फिर आज हम जानेंगे जो अगला रिचुअल होता है, जो अगला संस्कार, वेदारंभ और समावर्तन। ये तीनों संस्कार एजुकेशनल सेरेमनीज के रूप में जाने जाते हैं। मतलब इन तीनों संस्कारों का जो रिलेशनशिप है वो एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से है, इसीलिए इन तीनों संस्कारों को आज हम जानेंगे। जैसा कि पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे, वो जो उपवीत है जिसको हिंदी में जनेऊ कहते हैं, वो आपके लेफ्ट शोल्डर से, बाएं कंधे से लेकर चेस्ट से होकर के दाएं तरफ कमर तक आता है। और वो जो कमर है वो रेजुलेशन का प्रतीक है, रेजुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो डिटर्मिनेशन को डिटर्मिन करता है। और वो जो डिटर्मिनेशन है, जब उपनयन संस्कार हो रहा होता है तो ब्रह्मचारी या स्टूडेंट जब अग्नि में आहुति देता है यज्ञ में, तो वो पांच मंत्र उससे बुलवाया जाता है। वो पांच मंत्र वही है जो डिटर्मिनेशन, किस चीज का डिटर्मिनेशन, इसको बताने के लिए, उसको कहते हैं व्रत। और वो मंत्र बोलता है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनर्ध्यासम इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। कहता है, अग्नि तुम व्रतपति हो, अग्नि समझते फायर, आग, तुम व्रतों को पालन करने वाला हो, डिटर्मिनेशन को ठीक ठीक निभाने वाले हो, मैं तुम्हारे नाम पर कसम खाता हूं कि मैं भी तुम्हारे तरह जो डिटर्मिनेशन मैं अभी करने जा रहा हूं, जो संकल्प लेने जा रहा हूं, उसको मैं फुलफिल करूंगा। और वो क्या है मेरा जो संकल्प, वो वही है जो एजुकेशन का यूनिवर्सल पर्पस होता है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है ज्ञान का, नॉलेज का क्या पर्पस है। हमारे शास्त्र कहते हैं ज्ञान का पर्पस है अनृतात् सत्यमुपैमी। अनृत कहते हैं झूठ, फॉल्सहुड, डार्कनेस। सत्य कहते हैं ट्रूथ, रियलिटी। अनरियलिटी से रियलिटी की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का मतलब, जो अभी तक जो मैं इग्नोरेंस में था, इग्नोरेंस के था, मतलब मेरे जो चीजों के बारे में जो भी परसेप्शन था वो फॉल्स था, उस फॉल्सहुड से मैं रियलिटी या ट्रूथ की ओर जाऊंगा, इस बात की मैं संकल्प लेता हूं। मैं अग्नि तुम्हारा क्यों संकल्प लेता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं तुम हमेशा अपने संकल्प पर अटल रहते हो। तुम गर्म हो तो गर्म हो, कभी ठंडा नहीं होते हो। जो भी तुम्हारे गुण धर्म है वो गुण धर्म में तुम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हो। उसके बाद ब्रह्मचारी संकल्प लेता है, वायु का नाम लेता है, वायु व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, सेम मंत्र है शुरू। उसके बाद सेकेंड में पर वो वायु का नाम लेता है, वायु मतलब विंड, हवा, मैं तुम्हारे नाम पर भी संकल्प लेता हूं, क्योंकि तुम भी, मैंने देखा तुम भी अपने व्रतों को पालने में हमेशा अडिग रहते हो। जो भी वायु का धर्म है वो वायु उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। मैं तुम्हारे नाम पर भी संकल्प लेता हूं, मैं अपने व्रतों का संकल्प का ठीक ठीक पालन करूंगा जो उपनयन संस्कार में लिया, और उसका जो सबसे प्रोमिनेंट गोल है, मैं झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा, अनृतात सत्यम उपेमि। ये चंद्र थर्ड में वो चंद्र को एड्रेस करता है, तुम भी व्रतों को पालन करने वाले हो, मैं तुम्हारे नाम से सौगंध लेता हूं कि मैं भी अपने व्रतों को पालन करूंगा, वो है झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा। सूरज के नाम पर चौथा बोलता है, सूरज तुम भी व्रतों को पालन करने वाले हो, मैं तुम्हारे नाम पर भी सौगंध लेता हूं कि मैं झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा। और अंत में वो परमात्मा को एड्रेस करता है ब्रह्मचारी कि हे व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, तुम सभी संकल्पों के संकल्प करता हो, सारे संसार का तुम स्वामी हो, सारे संकल्पों को पालन करने वाला तुम हो, तो मैं तुम्हारे नाम पर भी सौगंध लेता हूं कि मैं उस व्रत का पालन करूंगा, और वो व्रत है इदा महामानृतात सत्यम उपेमी, मैं झूठ से सत्य की ओर जाऊंगा। ये जो व्रत है, इस उपनयन संस्कार का जो कोर वैल्यू है वो है व्रत, संकल्प लेना, डिटर्मिनेशन को बनाए रखना। इसीलिए बहुत सारे भारत में दूसरे दूसरे राज्यों में इस उपनयन संस्कार का नाम व्रत संस्कार भी होता है या व्रतोपनयन भी होता है। वो व्रत इसका कोर वैल्यू है, संकल्प लेना। और ह्यूमन बींग का नेचर स्वभाव है, वो नेचर में देखा हवा को, अग्नि को वायु को चांद को सूरज को और परमात्मा को, कि तुम सब अपने अपने व्रतों को जो भी तुमने प्रॉमिस किया था क्रिएशन में, तुम्हारा जो भी रोल होता है तुम हमेशा इसको निभाते हो, मैं भी अपने उस कर्तव्य को निभाऊंगा। इस उपनयन संस्कार के मैं कुछ मेन जो रिचुअल्स होते हैं मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, सारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक रिचुअल उसमें होता है उपनयन संस्कार में, जब आचार्य जो वहां उपनयन संस्कार में जो पुरोहित होता है या आचार्य होते हैं, वो अपने हाथ में पानी लेते हैं और उस पानी को अंजलि बना के लेते हैं और उस पानी को शिष्य के अंजलि में ऐसे डाल देते हैं, और वो शिष्य उसको उस पानी अंजलि में जो पानी भरा है उसको जमीन पर डाल देता है, और इस विधि के बाद रिचुअल के बाद वो बाहर जाता है, सूर्य का अवलोकन करता है, मतलब सूर्य को देखता है और मंत्र बोलता है। ये दोनों रिचुअल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये कुछ मैसेज देते हैं। क्या मैसेज है? जो एजुकेशन है, जो ज्ञान का जो फ्लो है वो कैसे होता है, ज्ञान का फ्लो और पानी का फ्लो जो है वो एक ही तरह का होता है। पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है और जब धरती में मिलता है तो धरती उसको, धरती में स्वभाव है पानी को हर जगह स्प्रेड कर देता है। फिर सूरज का रोल क्या है? सूरज इस पानी को ऊपर उठा लेता है, अपने किरणों से वेपोरेट करता है और बारिश बना के फिर धरती पर डालता है, जो सबके फायदे के लिए होता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ज्ञान का भी यही स्वभाव है, जिसके पास ज्ञान है गुरु, वो उस जल के तरह जो ज्ञान है उसको शिष्य के अंजलि में डालता है, और शिष्य का कर्तव्य क्या है? ज्ञान लेकर के सो ना जाए, उसको भी वो स्प्रेड करे, वो पृथ्वी में डालता है कि वो स्प्रेड हो जाए, और बाहर जाकर सूर्य को नमस्कार करता है कि जैसे सूर्य पृथ्वी पानी इन तीनों का एक कनेक्शन है, जिसको आप कहते हैं जल चक्र, द साइकिल ऑफ वाटर, या कुछ लोग कहते हैं वर्षा चक्र, द साइकिल ऑफ रेन। इसकी जो साइकिलिंग है, बादल पानी बरसाता है, धरती पर पानी आता है, सब जगह फैल जाता है, सूरज अपने किरणों से उस पानी को भाप बना के बादल बनाता है, फिर बादलों से फिर बारिश होता है, सब जगह पानी पहुंचता है। वही ज्ञान की थ्योरी है, गुरु से शिष्य तक ज्ञान आता है, शिष्य धरती में बाकी लोगों तक उसको पहुंचाता है, और वो लोग दूसरे तक पहुंचाते हैं, इस तरह साइकिल बना रहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और सुंदर एग्जाम्पल बात बताना चाहता हूं, जो जो हमारे भारतीय जो हिंदू ट्रेडिशन में जो हम मानते हैं, जो ज्ञान और पानी के बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो आगे जाकर कैसे आज भी हमारे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं नोइंगली और अननोइंगली। ज्ञान का एक दूसरा शब्द है सरह। सरह कहते हैं संस्कृत में, सृ धातु है जिसका मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली फ्लो करे, बहता जाए। पानी को भी सरह बोलते हैं, सरोवर तालाब को बोलते हैं ना, जो पॉन्ड है उसको सरोवर कहते हैं, फुल ऑफ वाटर है। जो नदी है उसको भी सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती। पानी जिसमें है, अच्छा माइथोलॉजी में हमारे जो ज्ञान की देवी है उसको क्या कहा जाता है, जो पर्सोनिफाइड फॉर्म ऑफ ज्ञान विद्या, सरस्वती देवी। क्या कनेक्शन है कि नदी भी सरस्वती है, देवी भी सरस्वती है, और वो देवी कौन है जो ज्ञान की और कला की देवी है? क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, क्योंकि ज्ञान सरह है। सरह का मतलब जो बहता है, एक जगह नहीं रुकता, एक को पता चला वो 10 लोगों को बताता है, 10 लोग 100 लोगों को बताते हैं, इस तरह ज्ञान फैलता है। और ज्ञान जब फैलता है तो सबको फायदा होता है, जब ज्ञान नहीं फैलता है तो नुकसान करता है, एक ही जगह रहता है तो। इसी तरह पानी का स्वभाव है फैलना, और जहां जहां जैसे जैसे जितना ज्यादा फैलता जाएगा पानी, उतने लोगों को फायदा करेगा। इसीलिए सरस्वती नदी, क्योंकि वो फ्लो करती है, और ज्ञान भी सरस्वती इसीलिए फ्लो करती है क्योंकि ये फ्लो करती है। तो उपनयन संस्कार का एक दूसरा रिचुअल आपको बताना चाहूंगा। एक उसमें रिचुअल होता है गुरु या जो आचार्य है वो शिष्य के हृदय स्पर्श रिचुअल है, उसका नाम है हृदय स्पर्श। उसमें गुरु शिष्य के सीने पर हाथ रख करके एक मंत्र बोलता है, मम ब्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मैं अपने हृदय को तुम्हारे हृदय में रखता हूं, मेरा मन तुम्हारे मन में रखता हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम्हारा मन भी मेरे मन में होगा और मुझे मेरे मन को फॉलो करेगा। और बड़े इंटरेस्टिंगली यही मंत्र और सेम रिचुअल विवाह में भी होता है। विवाह समझते हैं, जो वेडिंग सेरेमनी है, जो विवाह संस्कार होता है, तो उसमें पति पत्नी एक दूसरे के चेस्ट पर हाथ रखते हैं, दिल में हाथ रखते हैं, और यही मंत्र को रिपीट करते हैं, मैं अपना दिल तुम्हारे तुम्हें देता हूं या देती हूं, तुम मेरे विचारों को फॉलो करोगे, ये एक्सपेक्ट करता हूं या करती हूं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं। तो मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो, उस रिलेशनशिप में गुरु शिष्य का हो या पति पत्नी का हो, दोनों बाहर से आए हुए दो व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा कंडीशन है, वो कंडीशन है कि जब तक आप मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं करोगे गुरु के रूप में या शिष्य के रूप में, गुरु ना करे, दोनों की प्रॉब्लम को ना समझें, दोनों के मन को ना समझें, दोनों के प्रति रेस्पेक्ट ना हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा ना हो, तो विवाह से पति पत्नी का संबंध भी नहीं ठीक से चलेगा, और गुरु शिष्य का जो रोल है ज्ञान को बढ़ाना वो भी नहीं हो पाएगा, अगर एक उनमें से भी दूसरे के प्रति श्रद्धा ना रखे। ध्यान दीजिए कि एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप की जो पवित्रता है, जो उसकी जो एक यूनिक सेरेनिटी है, और एक एक यूनिक टाइप ऑफ उनकी जो रिलेशनशिप है, उस पवित्रता को हमारे ऋषि मुनि किस तरह समझते थे, और उपनयन संस्कार में वो रिचुअल के रूप में उसको कन्वे करने की कोशिश करते थे। एक रिचुअल उसमें होता है जब शिष्य, जनरली प्राचीन काल में शिष्य को माना जाता है, प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो कुछ गिफ्ट लेकर जाता है, कोई भी कुछ ज्ञान के लिए, और गिफ्ट होता है समित पाणी ही गुरुम ब्रजेत। पाणी कहते हैं हाथ को, समित मतलब समिधा, लकड़ी जो जलने लायक हो, लकड़ी जो फायरवुड। ये समित पाणी जो शब्द है शिष्य के लिए यूज होता है, ये बहुत ही सुंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग के साथ यूज होता है। जैसे पानी का हम एग्जाम्पल दे रहे थे, पानी को रिचुअल के रूप में यूज होता है, इसी तरह अग्नि यहां है। वो जो ज्ञान है वो अग्नि की तरह है, प्रकाशित करता है। अग्नि खुद को भी प्रकाशित करता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। तो ज्ञान जिसके पास आ जाता है, ज्ञान आग है, वो उस व्यक्ति को भी प्रकाशित करता है और वो व्यक्ति दूसरों से को भी प्रकाशित करता है। ये ज्ञान का स्वभाव है। और जो ज्ञान एक ऐसा चीज है, ज्ञान के पास जो जाता है वो खुद ज्ञानी बन जाता है। जैसे आग में जब आप लकड़ी डालते हैं, वो लकड़ी जो जलने लायक हो, कोई भी लकड़ी नहीं, जो जलने लायक हो, जब आप डाल देते हैं थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी खुद आग बन जाती है। आप तब नहीं बोलते हो कि ये लकड़ी है, जब आग जल रही होती है तब आप कहते हो ये आग है, जब लकड़ी जल रही होती है। बिना जले लकड़ी को आप लकड़ी बोलते हो, जब लकड़ी भी आग पकड़ ले कि तो ये आग है, मत छुओ, लकड़ी आग बन जाता है। गुरु अग्नि है, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर आ चुका है। शिष्य समिधा है, लकड़ी है जो जलने लायक है। जब शिष्य गुरु के पास आता है समिधा लेकर के, ये एक्सेप्ट करता है कि मैं जलने के लिए तैयार हूं, उस ज्ञान में डूबने के लिए तैयार हूं। जब गुरु उसको एक्सेप्ट कर लेता है ज्ञान देने के लिए, मतलब वो समिधा जलने शुरू होता है और 10, 12, 14, 15 साल के बाद अब शिष्य खुद आग बन चुका होता है, खुद गुरु बन चुका होता है ज्ञान के द्वारा। और एक रिचुअल कह के इस उपनयन को कंक्लूड करेंगे, उपनयन संस्कार को। बहुत इंटरेस्टिंग रिचुअल है, वो है भिक्षा। इस उपनयन संस्कार में एक विधि होता है जिसको कहते हैं भिक्षा। भिक्षा मतलब भीख मांगना। बच्चे से भीख मंगवाया जाता है, आचार्य जब उपनयन संस्कार हो जाता है, बच्चा खड़ा होकर के भीख मांगता है। और भीख किससे मांगता है? मनुस्मृति कहता है, मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम वा प्रथमम या चैनम नाभमानयेत। सबसे पहले जब भिक्षा मांगना शुरू करता है बच्चा ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार में, तो पहले अपनी मां से भिक्षा मांगेगा, फिर या तो अपनी बहन से भिक्षा मांगेगा, या मां की बहन जिसको मासी कहते हैं मासी से भिक्षा मांगेगा, या पीसी से भिक्षा मांगेगा, और इसी क्रम से भिक्षा मांगेगा महिलाओं से। और भिक्षा मांगते समय क्यों अपनी मां से ही क्यों शुरू करेगा? ऐसा व्यक्ति से मांगना जिससे वो इंसल्ट ना करे, जो उसको ह्यूमिलिएट ना करे। और जो भिक्षा मांगता है तो बोलता है भवती भिक्षाम देही। ये भवत शब्द है जिसका मतलब होता है आप। स्त्रीलिंग में होता है, संबोधन में भवती एड्रेस करता है, ए आप माताजी आप भिक्षा दीजिए। बहन से, मौसी से, पीसी से भिक्षा मांगता है उपनयन संस्कार में। पहली बात है, भिक्षा क्यों मंगवाया जाता है उपनयन संस्कार में? क्या भिखारी बनाना है बच्चे को आगे जाकर के ट्रेंड कर रहे? नहीं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिक ट्रेडिशन है। पहली चीज है, इसका जो ब्रॉडर सेंस में देखें, ज्ञान पाने के साथ जो ज्ञान का एक साइड इफेक्ट होता है, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति को देखो उसमें आपको उसका साइड इफेक्ट दिखेगा। ज्ञान के साथ जो ईगो है, अहंकार है, वो आता है। केवल ज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान हो, धन हो, पावर हो, जिसमें भी जो चीजें आपको बड़ा बनाता है वो आपके अंदर ईगो ले आता है। उस ईगो को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, आपको ख्याल रखना जरूरी है ईगो ना पनपे। अहंकार स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा बाधक तत्व है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इसलिए जब भी आप कोई स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने जाओगे, भक्ति करोगे, योग करोगे, साधना करोगे, तो जो सही गुरु होगा वो सबसे पहला उपदेश देगा, अपने अहंकार पर काम करो, अहंकार को मिटाने का। उपनयन संस्कार में, प्राचीन काल में उपनयन संस्कार से ही गुरु ये तैयारी करना शुरू कर देता है, भिक्षा मांगने जाओ। ये भीख से बुरी चीज और कुछ होता नहीं है देवियों सज्जन। भीख बहुत एम्बेरेसिंग होता है। जब आप भीख मांगने जाओगे तो कौन सा ईगो सर ऊंचा करके जाओगे? सर तो झुका के जाओगे ना। झुका के ही जाओगे ना, सर खड़ा करके थोड़े ही मांगोगे, ले निकाल दस दस रुपए निकाल, नहीं ना, झुक करके बोलना पड़ता है। ये झुकना सीखो, और झुकना सीखने का सबसे बढ़िया तरीका गुरु जी ने निकाला कि भिक्षा मांगने जाओ। फिर ये रूल होता था सन्यासी के लिए भी ब्रह्मचारी के लिए भी, जब आप भिक्षा मांगने जाओगे एक गांव में तीन बार से ज्यादा नहीं जाना, और जिस घर में मांगने जाओ वहां तीन बार से ज्यादा नहीं जाना। ये कंडीशन क्यों बनाया? क्योंकि जब आप एक घर में बार बार जाओगे तो धीरे धीरे आपका एक रिलेशनशिप हो जाएगा, वो घर गृहस्थी भी आपको प्यार करने लगेगा, रेस्पेक्ट करने लगेगा, और आप बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे मांगने में। अब आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा, अनजान व्यक्ति से मांगने में एम्बेरसमेंट होता है ना, अपने जान पहचान मांगने से, जान पहचान व्यक्ति से मांगो तो क्या आपको बुरा फीलिंग होगा, ये नहीं होना चाहिए। फिर तो भिक्षा का जो पर्पस था वो खत्म हो गया। इसीलिए रूल बनाया, हमेशा नए गांव में जाना, नए लोगों के घर जाना, तीन बार से ज्यादा नहीं जाना। मतलब आपको हमेशा नए लोग मिले, नया सिचुएशन मिले, और आपको एम्बेरसमेंट का फील होता रहे, और वो एम्बेरसमेंट टूटना चाहिए, वो ह्यूमिलिएशन का फीलिंग आपका बंद होना चाहिए। जब आप ह्यूमिलिएटेड होना, फील करना बंद कर देते हो तो आपका अहंकार बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुका होता है। ये उसका ब्रॉडर सेंस में यूज होना था, पर इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी था। गुरुकुल किसी पर डिपेंड नहीं करते थे। प्राचीन काल के जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज होते थे जिनको हम गुरुकुल कहते हैं, वो रेजिडेंशियल होते थे। बच्चे वहां खाना भी खाएंगे, रहेंगे भी वहीं, सोएंगे भी वहीं, पढ़ेंगे भी वहीं, खेलेंगे भी वहीं, सब कुछ वहीं करेंगे। और पैसा कहां से आएगा? आजकल के तरह थोड़ी है कि गवर्नमेंट पैसा देगा, नहीं, कोई राजा कोई स्कूल नहीं बनाते थे, गुरुकुल नहीं बनाते थे, और गुरुकुल किसी से डोनेशन भी नहीं लेता था। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखिए, ये वेस्टर्न कल्चर में आजकल हम फॉलो करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से वो ऑटोनॉमस होना चाहिए। क्यों? किसी गवर्नमेंट का या किसी व्यक्ति का उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाने वाला हो वो पढ़ने वाला हो, वो फ्री होना चाहिए, किसी के द्वारा दबाव में नहीं आए, ये पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसा मीनिंग निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर एटमोस्फियर ना हो, ज्ञान कभी फैलता नहीं है। 16th-17th सेंचुरी में ये वेस्टर्न वर्ल्ड समझा, और हम 5,000-10,000 साल पहले हमारे ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, पूर्वजों ने ये समझा था, पर आज का भारत नहीं समझ पाया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनको फ्रीडम कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है, कुछ बोलने के लिए आपको चुभ सकता है, आपको बुरा लग सकता है, पर ही और शी हैज टू स्पीक इट, बिकॉज उसका जॉब है कि जो ज्ञान है, जो सही है, वो आपको बताएं। उसके लिए उसको एक फ्रीडम का एटमोस्फियर चाहिए, फ्री एटमोस्फियर चाहिए। इसीलिए गुरुकुल किसी पर डिपेंड नहीं करते थे, ना किसी राजा से पैसा लेते थे, ना जमींदार से पैसा लेते थे, किसी से नहीं लेते थे, किसी इंडिविजुअल से। फिर गुजारा कैसे होता था? खुद गुरुकुल के बच्चे और आचार्य खेती करते थे, गाय पालते थे, जो डेली रोज के चीजें उनको मिल जाए, धान चावल गेहूं जो भी, और दूध सब्जी, वो अपने गुरुकुल के आसपास एरिया से अपने आप मिल जाए, और थोड़ा बहुत जो धन की जरूरत है वो भिक्षा लेते थे। भिक्षा एक व्यक्ति से नहीं, हर किसी से, नए नए लोगों से लेते थे, जिससे किसी का भी आपके ऊपर कोई दबाव ना रहे, क्योंकि हम पैसा देते हैं, हमारे हिसाब से पढ़ाओ, हमारे हिसाब से बोलो, हमारे हिसाब से करो, इसकी जरूरत ना रहे। देखिए कितना बड़ा सोच है। जहां भी ज्ञानियों के ऊपर बेड़ियां होती हैं, फ्रीडम नहीं होता, वहां ज्ञान दबा हुआ होता है। जब आप ज्ञानियों को दबाते हैं, आप ज्ञान को दबाते हैं। आप सोचिए, मिडिल एज में, मिडिवल एज में, जब यूरोप में, जब पोपों का सरकार होते थे, जब पोप राज करते थे, कैसे बड़े बड़े इंडिपेंडेंट सोचने वाले साइंटिस्ट फिलोसोफरों को मारा जाता था, उनको जेल में डाला जाता था, और कैसे ज्ञान दब जाता था। पर हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ। अपोजिट थॉट वाले को भी, ओपिनियन रखने वाले को भी, काउंटर ओपिनियन रखने वाले को भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलता था। क्यों? ज्ञान को बहना चाहिए, यही गुरुकुल का पर्पस था। भिक्षा का भी यही पर्पस था। भिक्षा से हम इंडिपेंडेंट होते थे, शिष्य और गुरु दोनों भिक्षा मांगते थे, शिष्यों के द्वारा भी मंगवाया जाता था। और उपनयन संस्कार में इसकी शुरुआत होती थी। अगर छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का है, अब उसको अगर सीधा आप आग में झोंक दो, बेचारा डर जाएगा। अभी आप बोलोगे जाओ अनजान आदमियों से भीख मांग करके लाओ, पता नहीं कौन कैसे बिहेव करेगा, बेचारा अंदर से डर जाएगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने रूल बनाया, भिक्षा पहले अपने मां से मांगना शुरू करो, वहां कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगा। तो आप थोड़ा फैमिलियर हो उस प्रैक्टिस से, मां नहीं है तो बहन से मांगो, मौसी से मांगो, पीसी से मांगो, अगर सब हैं तो उसी क्रम से मांगना, पहले मां से, फिर बहन से, फिर मौसी से, फिर पीसी से, फिर घर के बाकी लेडी रिलेटिव से मांगो। क्योंकि माताएं से, माताएं बहनों से मांगने से बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उन्हीं के बीच ज्यादा प्यार पाया हुआ होता है। पुरुष लोग इतने, बच्चा अपने पुरुष संबंधियों से इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं होता, इतना ओपन नहीं होता, जितने अपने महिला रिलेटिव से होता है, माँ बहन मासी पीसी वगैरह से होता है। इसलिए माँ बहनों से ही भीख मांगने की भिक्षा का शुरुआत की गई। उपनयन संस्कार के बाद आता है वेदारंभ संस्कार। मैं सारे उपनयन संस्कार का डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बताया थोड़ी थोड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है उसका क्या एक्चुअल सिग्निफिकेंस है बताया। तो बच्चे का जनेऊ संस्कार हो गया घर में, मतलब अब वो स्कूल जाने के लिए उसका इनिशिएशन हो गया, अब वो गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल पहुंचते ही सीधा पढ़ाई तो शुरू नहीं करेगा, थोड़ा दिन उसको चाहिए टेक्स्ट बुक शुरू करने के लिए। जब वो पढ़ाई शुरू करता है, जो एक्चुअल पढ़ाई, फॉर्मल पढ़ाई शुरू करता है, तो वो भी एक सेलिब्रेशन होता है, उसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार का अर्थ होता है द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल पढ़ाई की, जो एक औपचारिक पढ़ाई है, उसकी अब शुरुआत होगी, उस सेलिब्रेशन के साथ होगी, उसको वेदारंभ कहते थे। ये वेदारंभ इज द राइट ऑफ पैसेज दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ एजुकेशन इन गुरुकुल। गुरुकुल में पढ़ाई अब शुरू होगी। अब बड़े ध्यान रखिएगा, हमारे पूर्वज या हमारे परंपरा में, प्राचीन काल में, ये भी डिफरेंस रखा जाता, डिफरेंस को ध्यान रखा जाता था कि स्कूल में एडमिशन हो जाना सॉरी और एक्चुअल पढ़ाई शुरू करना दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, अभी भी उसके अंदर काफी हेजिटेशन है, उसको ठीक से हैंडल करने की जरूरत है, तो वो एक संस्कार के द्वारा किया जाता था, उसको कहते थे वेदारंभ संस्कार। उस वेदारंभ संस्कार में उसका जो मेन पार्ट होता था, मैं सिर्फ दो उसकी जो मेन रिचुअल की चर्चा करूंगा जो आपको जानना चाहिए। पहला है कि सावित्री उपदेश, गुरु शिष्य को पढ़ाई से पहले जो पहला ज्ञान देते थे, वो देते थे ओम और गायत्री मंत्र का उपदेश। वो कान में गायत्री मंत्र सुनाते थे और पाठ पाठ करके, पहले उसको बोलेंगे ओम, बच्चा रिपीट करेगा ओम, फिर व्याहृति सिखाते थे, भूर भुवः स्वः, छोटे छोटे टुकड़े ना, क्योंकि बच्चा है, बच्चा रिपीट करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, बच्चा रिपीट करता है। जब एक एक पार्ट रिपीट करता है, फिर पूरा मंत्र रिपीट करते हैं, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र पहला ये वेद मंत्र है, पहली वेद की शिक्षा के रूप में गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। इसका दूसरा नाम सावित्री उपदेश है, क्योंकि गायत्री मंत्र की जो देवता है वो सविता है। ये गायत्री मंत्र में किसकी प्रार्थना की गई है आप लोग सब जानते हैं, बुद्धि की। हे प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात्, वो जो तुम सविता हो, मोटिवेटर हो, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हो, वो मेरी बुद्धि को प्रेरित करो, इंस्टिगेट करो, मेरे माइंड को, ब्रेन को शार्प करो कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा सीख पाऊं, और जो सीखा उसको ठीक से एनालाइज कर पाऊं, और जिसको एनालाइज किया उसको मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं। गायत्री उपदेश के बाद एक बड़ा सुंदर रिचुअल होता है, और वो रिचुअल है पिता, जो उसके पिताजी हैं वो उसको कुछ उपदेश देते हैं, लास्ट उपदेश। अब पिताजी का ये अंतिम उपदेश है ना, क्योंकि उसके बाद तो गुरु के हवाले हो जाएंगे, गुरु जी उसको संभालेंगे। और उस वेदारंभ संस्कार में पिताजी जो उपदेश देते थे वो आज भी, उसमें बहुत सारे उपदेश ऐसे हैं जो आज भी बहुत रिलेवेंट हैं। कुछ चीजें आज उसकी ज्यादा यूज नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं, अब बहुत सारे यूजफुल हैं। क्या क्या मेन मेन पिताजी का उपदेश होता था, मैं संस्कृत मंत्र नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसका मीनिंग आपको बता दूंगा। पिताजी का उपदेश होता था, उसको पास लेकर के पिताजी, उसके फादर बताते थे कि आज से लेकर के तुम ब्रह्मचारी हो, अब तुम्हारा लाइफ सेलिबेसी से भरा होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे, कभी भी आलस्य नहीं करना, खाली बिना काम का बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, ऑलवेज रिमेन बिजी विथ वर्क, दिन में नहीं सोना, अपने गुरुओं का डिसोबे डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, उनके आज्ञा का पालन करना। हाँ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो जो ब्लाइंड हिंदू होते हैं उनके लिए ये बड़ा सुंदर मैसेज है कि टीचर के, गुरुओं के वही बात मानना जो धर्मपूर्ण हो। गुरु जी के कोई बात अगर अधर्म से प्रेरित हो, पाप कराने के लिए किया जाता हो, उसको बिल्कुल नहीं सुनना। ये अंध भक्त जो हिंदू लोग हैं वो सुन ले ध्यान से, तुम्हारे पूर्वज अपने बच्चों को उपदेश देते थे कि आचार्यों के, अपने गुरुओं के वही बात मानना जो सही हो, गलत बात को नहीं मानना। आज तो हम गुरुओं के चरण धोकर भी पी जाते हैं क्योंकि गुरु जी ने बताया। इसीलिए मैंने कहा आज भी काफी रिलेवेंट है। इफ इवन द टीचर से समथिंग रॉन्ग, डिसरिगार्ड इट, नहीं सुनना आचार्य कभी, पर रेस्पेक्ट जरूर करना, अपना गुस्सा और झूठ को आने नहीं देना, गुस्सा को दूर रखना और फॉल्सहुड झूठ भाव को दूर रखना, डोंट लेट द माइंड वंडर टुवर्ड्स द 8 टाइप ऑफ सेक्सुअल अलुरमेंट, जो 6-8 तरह के सेक्सुअल अट्रैक्शन है उनसे दूर रहना, जैसे कि अपने अपोजिट सेक्स के, अगर लड़का हो लड़की, लड़की हो तो लड़का, उनसे क्लोजली बात नहीं करना विद्यार्थी अवस्था में, उनको टच नहीं करना, और भी बहुत सारे चीजें हैं, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अपना बाल दाढ़ी मूछ वगैरह काटना नहीं, क्योंकि अपने शरीर को सुंदर बनाने के पीछे पड़ोगे तो शारीरिक भूख के लिए फिर टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा तुम शरीर के लिए, अपने शरीर की सुंदरता के लिए कॉन्शियस बनोगे, उतना तुम्हारा एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ता रहेगा। इसीलिए अपने शरीर की सुंदरता को ध्यान नहीं रखना, इसके लिए जरूरी है कि बाल मत काटो, दाढ़ी मूछ वगैरह है तो मत काटो, नाखून वगैरह काटना सफाई के लिए जरूरी है वो करना, पर सुंदरता के लिए कोई चीज ना करना विद्यार्थी अवस्था में। मांस नहीं खाना, सड़ा हुआ खाना मत खाना, शराब वगैरह से दूर रहना, किसी कोमल सैया पर, किसी सॉफ्ट जो बेड है उस पर नहीं सोना, बॉडी को अपने शरीर को फूल जैसा नहीं बनाना, शरीर को पत्थर जैसा बनाओ, कहते ना फौलाद बनाओ, जमीन पर सोना, हार्ड फ्लोर पर सोना, नाचना गाना, तेल वगैरह का मालिश करना, इससे दूर रहना, ये आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर ज्यादा फंसाते हैं, आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। किसी भी चीज को एक्सेस नहीं करना, ना ज्यादा नहाना, ना ज्यादा खाना खाना, ना ज्यादा एक्सरसाइज करना, ना ज्यादा सोना, ना ज्यादा जगना, हर एक को एक माइल्ड वे में करना, किसी भी चीज को एक्सेसिव तक नहीं ले जाना। जो अब्यूसिव क्रिटिसिज्म है, दूसरों को गाली देना, लालच, अटैचमेंट, डर, इन सब, दुखी होना, हर बात पर मुंह लटका के बैठना, दुखी होना, इन चीजों से भी दूर रहने की कोशिश करना, इनको अपने अंदर आने नहीं देना। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाना, अपना दांत साफ करो, शरीर साफ करो, संध्या करो, परमात्मा को याद करो, योग आदि प्रैक्टिस करो, और ज्ञान पाने के लिए हमेशा अपने अंदर आग जलाते रहना, मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, ये भूख को मरने नहीं देना, ज्ञान के भूख को, और हमेशा शिष्ट बनना, शिष्ट वेल बिहेव्ड सिविलाइज्ड बनना, और कम बोलना, ज्यादा बोलोगे कम सीखोगे, कम बोलोगे दूसरों का ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा सीखोगे। ध्यान दीजिए, जिससे सीखने जाते हैं उससे आप ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आप कम सीखेंगे। अगर आपके अंदर सीखने का भूख है तो कम बोलें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे दूसरों को सुनने का टाइम आपको कम मिलेगा। जब आप बहुत सुनते हैं कम बोलते हैं तो आप अपने आप को एनलाइटन करते हैं, एजुकेटेड करते हैं। इसलिए ये विद्यार्थी का कर्तव्य है, वो टॉकेटिव ना बने, ज्यादा बड़बड़ करने वाला ना बोले, कम से कम बोले, ज्यादा सुने, ये पिता का उपदेश है। अब हमने ओवरऑल उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनको जाना। इसमें और एक चीज है जो जानने की, आजकल जहां भी उपनयन संस्कार होता है लड़कियों का नहीं होता है। नंबर टू, जो पुरुष लोग जनेऊ पहनते हैं उनके तीन धागे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तीन के जगह छह धागा होता है। क्यों, क्या लड़कियों का जनेऊ संस्कार में अधिकार नहीं है, ऐसा कोई शास्त्रों में प्रमाण है? और छह धागे लड़के क्यों पहनते हैं, ये बहुत जानने की जरूरत है। मैं दो चार चीजें बताना चाहूंगा जो पुंगापंथी पंडित लोग हैं वो समाज में ऐसा एक बातें फैलाई गई कि महिलाओं का जनेऊ संस्कार नहीं होना चाहिए, गायत्री मंत्र भी नहीं सुनना चाहिए। पर अगर आप हम उन्हें प्राचीन शास्त्रों को देखें, वहां हमें हजारों एग्जाम्पल्स मिलते हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं, जहां महिलाओं का भी, बच्चों मतलब लड़कियों का भी जनेऊ संस्कार होता था, वो भी गुरुकुलों में पढ़ते थे, जनेऊ धारण करते थे, ज्ञानी विदुषियां होते थे, आचार्य होते थे, ग्रंथ लिखते थे और ग्रंथ पढ़ाते थे। तो उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा ना बोलूं तो ये संस्कार पूरा नहीं होगा। प्राचीन काल में भी महिलाएं ज्ञानी होती थी, आचार्याएं होती थी। पाणिनि जब वो व्याकरण में सूत्र में लिखते हैं, जब स्त्री प्रत्यय जब स्त्रीलिंग बनाने का विधि बताते हैं तो कहते हैं आचार्य की पत्नी आचार्यानी, और जो खुद आचार्य हो, पढ़ाती हो, वह आचार्या, मतलब महिला आचार्या भी हुआ करते थे। और आचार्य बनने के लिए आपको गुरुकुल में पढ़ना जरूरी है, और पढ़ने के लिए उपनयन और वेदारंभ संस्कार जरूरी है, और उपनयन करने के बाद जनेऊ पहनना भी जरूरी है। तो लड़कियों का भी जनेऊ संस्कार होता था। एक दो प्रमाण आपके सामने रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अथर्वेद का मंत्र कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं। अथर्वेद कहता है कन्या लड़की ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ को पार करने के बाद कैसे आप स्टूडेंट बनेंगे, प्राचीन काल की बात करें, उपनयन संस्कार के बिना तो कोई आप किसी गुरुकुल में विद्यार्थी बन ही नहीं सकते। तो अथर्वेद कहता है कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन करने के बाद जवान पति को विन्दते प्राप्त करती है। प्राचीन धर्म सूत्र में एक हरित धर्म सूत्र है, वो कहता है कि दो तरह के प्राचीन काल में लड़कियां होती थी, महिलाएं, ब्रह्मवादिनी सद्योवधू। तत्र ब्रह्मवादिनी नाम उपनयनम अग्निंधनम वेदाध्ययनम स्वगृहे भिक्षा चरिएति। अर्थात ब्रह्मवादिनी महिला उनको कहते थे जो उपनयन वगैरह संस्कार हुआ है, यज्ञ वगैरह करती थी, वेदादि समस्त शास्त्रों को पढ़ती थी और भिक्षा घर में ही भिक्षा मांगती थी। लड़कियों को बाहर जाकर भिक्षा मांगने को अलाव नहीं था प्राचीन काल में भी, क्योंकि लड़की होने के नाते कुछ कुछ सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए वो सिर्फ अपने घर में, अपने रिलेटिव के घर में ही भिक्षा मांग सकती थी, उनको बाहर जाने की अलाव नहीं थी भिक्षा मांगने के लिए। तो ये ऐसी लड़कियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। एक दूसरे तरह की लड़कियां होती थी जिनको सद्योवधु कहा जाता था, मतलब वो उपनयन संस्कार या ब्रह्मचर्य आश्रम या पढ़ाई लिखाई के थ्रू नहीं गए, पर उनको जनेऊ करना जरूरी है, तो उसके लिए नया नियम बनाया कि जो लड़कियां गुरुकुल में आश्रम नहीं जा पाए, उपनयन संस्कार नहीं हो पाया, वो विवाह के समय जब उनकी शादी हो, सद्योवधु नाम तु उपस्थिते विवाहे कथमचित उपनयन मात्रम कृत्वा विवाह कार्य। तो जो बचपन में उपनयन संस्कार नहीं हो पाया या गुरुकुल वगैरह में नहीं पढ़ पाए, उनको विवाह के संस्कार के समय ही जैसे तैसे जनेऊ डाल के उपनयन करा देना, फिर शादी कराना, क्योंकि उपनयन किए बिना लड़की का शादी नहीं करना। इसी तरह गोभिल गृह सूत्र में कहता है प्रावृत्ताम यज्ञोपवीतिनीम अभ्युदानयन जपेत सोमो ददत गंधर्वाय इति। यज्ञोपवीत पहनी हुई लड़की को ही पिता वर के हवाले करे, मतलब शादी कराए, पिता उसी लड़की की शादी कराए जो यज्ञोपवीतिनी हो, जनेऊ पहनी हुई हो, वो जनेऊ या तो उपनयन संस्कार में पहनी हुई हो, अगर गलती से नहीं पहन पाए तो शादी के समय करा के डालना। आश्वालयन गृह सूत्र कहता है कि समावर्तन के समय, समावर्तन अभियान पढ़ेंगे, जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है ना, तो उसका ग्रेजुएशन आप करते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो प्राचीन काल में उसको भी हम सेलिब्रेट करते थे, उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। आज अगर टाइम होगा तो आज उस पर भी चर्चा करेंगे। तो समावर्तन संस्कार में एक रिचुअल होता था, तो रिचुअल है कि एक हल्दी का पेस्ट लगाना, उपटन लगाना पड़ता था। तो अश्वलयन कहता है ब्राह्मण मुंह पर वो उपटन लगाए, क्षत्रिय दोनों बाहुओं पर लगाए, वैश्य अपने पेट में लगाए, स्त्री अपने गर्भस्थान पर लगाए, अनुलेपनेन पाणि प्रलिप्य मुखमग्रे ब्राह्मणो अनुलिम्पेत बाहु राजन्यः उदरम वैश्यः उपस्थम स्त्री उरु शरण जीविनः। अश्वलयन 3.8.2। इसी तरह महाभारत में आता है जो पांडवों की माताएं थी माद्री और क्या नाम है कुंती, उनको अथर्वेद के मंत्र सिखाने के लिए एक ब्राह्मण आते थे, सिखाते थे। ततस्ताम अनवद्यांगीम ग्राहया मास सद्विज मंत्र ग्रामम तदा राजन अथर्व शिरसि श्रुतम। हरित लिखते हैं जब धीरे धीरे लड़कियों के बारे में शिक्षा के बंद करने की कोशिश हुई, तो अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशन आए, तो आगे जाकर बनाया गया कि कुछ आचार्यों ने ये रूल बनाया कि लड़की तब तक गुरुकुल में पढ़े जब तक उसका मासिक धर्म ना हो जाए, जो मंथली ना हो जाए, उसके बाद वो अपने घर में माँ बाप भाई बहनों से पढ़ सकती है, ऐसा कुछ आचार्यों ने माना है। प्राक रजसह समावर्तनम इति, रजस्वला होने से पहले, होने जब तक रजस्वला ना होए तब तक वो गुरुकुल में पढ़ सकती है, उसके बाद घर में आकर पढ़ सकती है, ऐसा एक आचार्य मानते हैं। इसी तरह यमस्मृति एक और धर्मशास्त्र से रिलेटेड और एक ग्रंथ है यमस्मृति। वो कहता है पुराकल्पे कुमारीणाम मौंजी बंधनम इष्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा। पहले लड़की भी मौंज वो मेखला बांधते थे, जनेऊ पहनते थे, वेद पढ़ते थे, गायत्री मंत्र पढ़ते थे, आजकल बंद हो गया। और संस्कृत लिटरेचर में ऐसे हमें सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिलता है, जो जो ड्रामा है, जो जो पोएम्स हैं, पोएट्री है, उसमें जो लेडी कैरेक्टर है राजा घर की या वैश्य की, जो भी हो लेडी कैरेक्टर है, वो जनेऊ पहनी हुई उनका वर्णन मिलता है। एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं, एक संस्कृत में एक बहुत बड़ा सुंदर काव्य है, गद्य काव्य प्रोज, बहुत फेमस है, उसको कहते हैं कादंबरी, उसके जो ऑथर हैं वाणभट्ट। तो वाणभट्ट अपने कादंबरी में जो उनकी सबसे बड़ी नायिका है, जो हीरोइन है उस स्टोरी का, महेश्वेता, महाश्वेता, उस महाश्वेता के वर्णन में लिखते हैं ब्रह्म सूत्रेण पवित्रीकृत कायाम। वो महाश्वेता जिसका शरीर ब्रह्म सूत्र से जनेऊ से पवित्र की गई थी, मतलब जनेऊ संस्कार उसकी हुई थी, कालक्रम में धीरे धीरे जब सोसाइटी में मैनिपुलेशन बढ़ने लगा, इग्नोरेंस बढ़ने लगा, कुछ लोगों के एक्सप्लोइटेशन बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे स्त्री और शूद्रों के लिए ये बैन होने लगा पढ़ना लिखना जनेऊ करना। मनुस्मृति तक बहुत हद तक स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई पर बैन हो गया था। मनुस्मृति कहते हैं जात कर्म से उपनयन तक जितने भी संस्कार है लड़कियों का वो कराया जाए, मनुस्मृति कहते हैं कराया जाए पर बिना वेद मंत्र पढ़े, क्योंकि तब तक संस्कार तो लड़कियों का वही सेम थे उपनयन तक भी, पर वेद पाठ वगैरह से उनको वंचित किया जा चुका था। तो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आए, फिर एक समय ऐसा आया कि स्त्री और शूद्रों को पूरी तरह शिक्षा उपनयन सबसे हम वंचित कर गए। अब हम धीरे धीरे एजुकेटेड बन रहे हैं, अपनी चीजों को जाने समझें, और लड़के लड़कियों को भी वो समान अधिकार मिलना चाहिए। और आज के डेट में, आज भी भारत में हमारे स्त्रियों की क्या दशा है हम सबको पता है, और प्राचीन काल में कितनी विदुषी स्त्रियां होती थी। अगर आप प्राचीन उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, धर्मशास्त्र, इवन पुराण वगैरह भी, महाभारत रामायण पढ़ें, आपको पता चलेगा कितनी विदुषी और ज्ञानी स्त्री लोग हुआ करते थे और डिबेट किया करते थे। इवन शंकराचार्य के समय भी मंडन मिश्र नामक जो विद्वान नॉर्थ इंडिया के थे, उनके साथ जब उनका डिबेट हुआ तो जो जज बनी थी, जो ज्यूरी बनी थी, वो एक महिला थी, वो मंडन मिश्र की पत्नी थी, भारती मिश्रा। तो ये महिलाओं का हमारे प्राचीन काल में बड़ा आदर था, उनको भी पुरुषों के तरह एजुकेशन में, संस्कारों में समान भागीदार था। बाद में ये सब बंद हो गया हिंदू सोसाइटी में, और आई होप कि जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो रिवाइव होगा। और एक रिचुअल है, टाइम कम है पर मैं सोचता हूं आज इसको कंक्लूड करूं, हो सकता है एक दो मिनट लेट होगा तो आप लोग मुझे माफ करिएगा। अगला जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। बच्चा गुरुकुल में गया, पढ़ाई लिखाई हुई, 12 साल, 14 साल, 15 साल, जितने दिन भी वो पढ़ना है पढ़ा। अब पढ़ाई पूरी हुई, जैसे बिल्कुल जैसे आपके आज के बच्चे कॉलेज पढ़ाई पूरी होती है तो ये ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, चांसलर्स आते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, सारे प्रोफेसर बैठते हैं, बच्चे एक पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, फिर वहां कुछ सेरेमनीज होती है, फिर वो टोपी उछालते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो होता है एंजॉय करते हैं सेरेमनी सेलिब्रेशन। और जो थोड़े रिलीजियस भाव रखते हैं वो अपने घर में हवन वगैरह करते हैं और उसको रिलीजियसली भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के मॉडर्न लोग ऐसा करते हैं, 10,000-20,000 साल पहले भी हम लोग करते थे। बच्चा सब चीज सामने सेलिब्रेट किया, बच्चा पढ़ाई पूरी करके घर आएगा सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो भी करते थे, उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, ग्रेजुएशन सेरेमनी, द सेरेमनी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में ऐसे सेरेमनी होती थी, आजकल ऐसे सेरेमनी होती है। ये भी थोड़ा सा अभी भी ये इंडिया में ये वेस्टर्न वर्ल्ड से सीख करके ये टोपी उछालना वगैरह अब पहले चलता था, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं 5-7-10 साल से बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अब वो टोपी वगैरह ना पहन के, वो ब्लैक कोट ना, गाउन ना पहन के अब वो इंडियन ड्रेस पहनते हैं, दुपट्टा डालते हैं। तो इस तरह का अब धीरे धीरे इंडिया में शुरू हुआ है। इट इज ए गुड साइन कि हमारे बच्चे अपनी कल्चर को अडॉप्ट करें। आप कितना भी मॉडर्न बनो, कितना भी एजुकेटेड बनो, अपने कल्चर से जुड़े रहना सबसे बेस्ट होता है, अपनी जो कल्चर की कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहना। तो ठीक है, जो भी उपाय है, इस तरह के भी कन्वोकेशन अब भारत में होने लगे हैं। तो समावर्तन संस्कार, फॉर्मल एजुकेशन के एंड या ब्रह्मचर्य आश्रम का अंत की सूचना है। मतलब ये जो एक बड़ा रिगोरियस लाइफस्टाइल में बच्चा जीता था, अब उसका एंड है, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब वो खुले आसमान में आएगा, पूरे लाइफ को एंजॉय करेगा, जो पढ़ा लिखा है उसको इंप्लीमेंट करेगा और एक नॉर्मल लाइफ को जिएगा और शादी करके गृहस्थ आश्रम में भी वो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में जाएगा। तो इस संस्कार का जो मैं 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। एक जो मेन संस्कार इसमें होता है उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान मतलब उस संस्कार में यज्ञ वगैरह तो होता है, तो बच्चे को एक पर्टिकुलर वे में नहाया जाता है पवित्र जलों से, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। उस स्नान के बाद वो बच्चा स्नातक बनता है। स्नातक का लिटररी मीनिंग क्या है? नहाया हुआ। द पर्सन हु हैव बाथ्ड, जिसने शावर ले लिया हो उसको स्नातक कहते हैं। अच्छा बताइए, हिंदी में या इंडियन लैंग्वेज में जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट बच्चे को हिंदी में या अपने जो इंडियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्नातक या स्नातिका। स्नातक और स्नातिका का लिटररी मीनिंग क्या हुआ? नहाया हुआ। अब ये क्या मतलब हुआ? पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, उसके साथ नहाया हुआ का क्या संबंध है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध है। अभी उपनयन संस्कार में आपसे बात कर रहे थे ना, विद्या और जल, लर्निंग और वाटर, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों फ्लो करते हैं, इसको याद रखिए। अब हम आते हैं स्नातक समझने के लिए, बहुत मजेदार चीज है ये। स्नातक का मतलब जो विद्या में नहा लिया, विद्या मानो समुद्र हो, नदी हो। स्नातक जिसने उस ओशियन ऑफ लर्निंग, विद्या का जो सागर है उसको जिसने क्रॉस कर लिया हो, वो स्नातक है। विद्या रूपक पानी में जिसने डुबकी लगा दिया हो वो स्नातक है। ये मीनिंग है। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी वो 3 तरह के ग्रेजुएट निकल होते थे, आजकल भी होते हैं ना। पहला स्नातक होता था, उसको कहते थे विद्या स्नातक। मतलब जो उससे पहले मैं जरा क्लियर कर दूं, गुरुकुल में बेसिकली 2 तरह की एजुकेशन होता था। पहला लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा कैरेक्टर बिल्ड करना, शुरू में हमने ये डिस्कशन किया था। व्रत, संकल्प, ब्रह्मचर्य का पालन करना और भी जो भी साधना करना, ये दोनों की पास करना जरूरी है। जो बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, एजुकेशन उसका डन हो गया, उसको कहते थे विद्या स्नातक। मतलब वन हु हैज बाथ एंड इन लर्निंग, जो पढ़ाई को सब सीख लिया है। दूसरा होता था व्रत स्नातक, मतलब वो पढ़ाई इतना अच्छा नहीं किया, हो सकता है अच्छे नंबर नहीं लाया, बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, पर उसकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग का जो काम था उसमें वो पास कर गया, वन हु हैज बाथ इन वाउज, जो उसने वाउज लिया था, संकल्प लिया था, उसको उसने पार कर दिया, वो भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। पर अगर कोई बच्चा दोनों को पास कर जाए, विद्या भी सीख जाए और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बढ़िया हो जाए, तो उसकी जो डिग्री मिलती थी उसमें जो लिखा होता था विद्या व्रत स्नातक। आजकल डिग्री मिलता है ना, ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, सिंपल ग्रेजुएशन, इसी तरह ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स विद्या व्रत स्नातक। और विद्या स्नातक एक केवल ज्ञान में, व्रत स्नातक केवल जो कैरेक्टर बिल्डिंग में। ये तीन तरह की, उस समय कोई सर्टिफिकेट लिखा हुआ तो नहीं होता था, गुरु बोल देता था कि आप इस विषय में गए। इसके बाद विद्यार्थी का जब जनेऊ समावर्तन संस्कार होता था, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो घर जाए विवाह संस्कार करके अपना हाउस होल्डर लाइफ, शादीशुदा लाइफ जिए, और जो पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार वो अपने संतान पैदा करे, विवाहित जीवन जिए, उसको कहते प्रवृत्ति मार्ग। जो ब्रह्मचारी उस मार्ग को फॉलो करता था उसको कहते थे उपकुर्वाण। कुछ विद्यार्थी या ब्रह्मचारी ऐसे होते थे जो, जिनके अंदर वैराग्य भाव है, जो शादी नहीं करना चाहते थे, गृहस्थी में नहीं जाना चाहते थे, वो आश्रम में ही रह करके गुरुओं की सेवा करके और साधना करके स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना कोशिश करते थे, उनको वो है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब सांसारिक मार्ग से जिसका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो लाइफ ऑफ या पाथ ऑफ रिटायरमेंट, सांसारिक चीजों से रिटायरमेंट का मार्ग, उसको संस्कृत में कहा जाता था नैष्ठिक। तो ये दो तरह के मार्ग वो चुनते थे। नैष्ठिक बहुत कम लोग चुनते थे, 90% 99% गृहस्थी मार्ग चुनते थे। अब जो लास्ट जो है, मैं 2-3 मिनट आज एक्स्ट्रा लूंगा, सॉरी, मुझे माफी, माफ कर लिए, क्योंकि आज कंक्लूड करना है। वो समावर्तन संस्कार में एक जो बहुत सिग्निफिकेंट रिचुअल है उसको बिना बोले मैं रहूंगा नहीं। गुरु कुछ लास्ट उपदेश दे रहा था, याद करिए, उपनयन संस्कार के बाद जब वेदारंभ होता था, पिता का लास्ट उपदेश होता था कि गुरुकुल में कैसे जियोगे। अब गुरु शिष्य को, क्योंकि वो गुरुकुल छोड़ के अब जा रहा है, अब गुरु के साथ रोज बैठना उठना नहीं होगा, तो कुछ अपना लास्ट उपदेश देते थे, उसको आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन एडवाइसेस। तो वो जानना जरूरी है स्नातक के क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तैतिरीय उपनिषद का शिक्षा वल्ली में बड़ा सुंदर इसके बारे में वर्णन है, और मैं ज्यादा संस्कृत श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है। वेद मनोच्याचार्योन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। गुरु बोलते थे आप जा रहे हो, अब हम रोज तुम्हें टोकने वाले नहीं है, 5-7 चीजें सुन के जाना, सत्य बोलना हमेशा, धर्म का आचरण जरूर करना, पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करना, अभी तो फॉर्मल पढ़ाई हो गई, पर रोज कुछ ना कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना, कोई सेल्फ स्टडी में कंप्रोमाइज नहीं करना। आचार्य को जो अच्छा लगे गिफ्ट के रूप में दे देना, पर आचार्य अगर फोर्स करे शादी मत करो तो उसको नहीं मानना। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सिहि। और सुनो बच्चे, सत्य से कंप्रोमाइज नहीं करना, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम। ट्रुथ को, सत्य को नेग्लेक्ट नहीं करना, अपने जीवन में वर्च्यूज को रेस्पेक्ट करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, दूसरों के भला करने को नेग्लेक्ट नहीं करना, और प्रॉस्पेरिटी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, सेल्फ स्टडी और दूसरों को पढ़ाना हमेशा जारी रखना, इसको नहीं छोड़ना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और माँ बाप की के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। और क्या, ये बड़ा फेमस आपने सुना होगा, पितृदेव मातृदेव भव, पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देवो भव। अपनी माँ को देवता समझना, अपने पिता को देवता समझना, अपने अध्यापक को देवता समझना, और जो अतिथि हैं, जो सामाजिक सेवा में लगे हुए लोग हैं उनको भी देवता समझना। जो अच्छी चीजें हैं वही करना, जो बुरे हैं नहीं करना। यानी सुचरितानी तानी त्वया उपास्यानी सेवितव्यानी नो इतराणी। और ध्यान रखो आचार्य या गुरुजनों की हर कर उपदेश को तो फॉलो करना, उनके चरित्र में जो अच्छे व्यवहार है सिर्फ वही फॉलो करना, जो उनके भी चरित्र में कोई बुरा दोष है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। जो तुम्हारे से बड़े हैं रिस्पेक्टेबल हैं उनको हमेशा सम्मान देना, आसन दे करके उनके सम्मान करना। देने के साथ दान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, हमेशा देते रहना। इच्छा हो तो भी दो, इच्छा ना हो तो भी दो, श्रद्धा से दो, श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से दो। अगर श्रद्धा अश्रद्धा से अगर तुम्हें डर के मारे देना है तो डर के मारे दो, शर्म के मारे देना है तो शर्म के मारे दो, दया के मारे देना है दया के मारे दो, पर देना जरूरी। गिफ्ट देना, चैरिटी करना, दूसरों के मदद के लिए देते रहना। और जब भी तुम्हें डाउट हो अपने लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, अपने प्रोफेशन में कोई डिलेमा हो, तो हमेशा जो भी संसार में बड़े ज्ञानी विद्वान लोग हैं जिन्होंने धर्म को हमेशा अपना बना रखा है, जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, जो क्रूएल नहीं है, जो धर्म जो हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखते हैं, ऐसे लोगों के चरित्र से सीखने की कोशिश करना। और अंत में उसको कंक्लूड करते हैं, एषा देशः एषः उपदेशः एषा वेदो वेदोपनिषद एतद अनुशासनम। तुम इसको हमारा कमांड मानो तो ये कमांड है, इसको तुम हमारा टीचिंग मानो तो ये टीचिंग है, तुम इसको वेद के सार समझो तो वेद का सार है, तुम इसको हमारा अनुशासन समझो तो इंस्ट्रक्शन समझो तो इंस्ट्रक्शन समझो, बट यू हैव टू फॉलो इट, दिस वन शुड बी फॉलोड, तुम्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी तरह गुरु समावर्तन संस्कार में विद्यार्थी को आशीर्वाद के साथ उपदेश देता था और समावर्तन संस्कार पूरा होता था। अगले बार जानेंगे, अब पढ़ा लिखा बच्चा हो गया, पैसा कमाने भी लग गया, घर अब घर गृहस्थी जाएगा, शादी करेगा, कैसे शादी करता है, शादी करने के बाद लाइफ कैसे होता है, वो हम अगले बार जानेंगे। मैंने जो थोड़ा ज्यादा समय लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।